सभी बाबा के स्मृति दिवस पर बाबा की दुआओं से भरपूर होने के लिए अपने प्यारे मधुबन शांतिवन घर में पधारे हैं। वैसे ये अव्यक्ति मास जिसको हम सब अनुभूति मास के रूप में मना रहे हैं, इस अव्यक्त मास को इस जनवरी महीने को ही विशेष बाप दादा के द्वारा अनेक वरदान मिले हुए हैं। अनेक वरदानी आत्माएं जो बाबा के प्यार में समा कर रहती हैं, साकार की स्मृतियां जिनके दिल में सदा समाई हुई रहती हैं, तो स्नेह के आधार से बाबा की दुआओं का अनुभव उन्हें हर पल होता रहता है। कई बार बाबा एक शब्द देते हैं कि आप बच्चे योग की बहुत मेहनत करते हो, और बाबा को बच्चों की मेहनत देख करके रहम आता है कि मेरे बच्चे और फिर भी मेहनत क्यों। उसकी बहुत सहज विधियां बाबा हमें समय पर समय सुनाते रहते हैं। इस साल सीजन के प्रारंभ से ही हम सब ने दो मुरलियों में विशेष सहज पुरुषार्थ की विधि बाबा के द्वारा सुनी है कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। सभी ब्राह्मण बच्चों के अंदर संगम युग पर ये लक्ष्य रहता ही है कि हमें हरेक की दुआएं लेनी है, और उसके लिए वो कोई न कोई प्रकार के दिव्य गुणों की धारणा अपने जीवन में करते हैं। एक गीत बजता है कई बार पहले साकार बाबा की मुरलियों में आता है कि ले लो दुआएं माँ बाप की तो उतरेगी गठरी पाप की। योग के द्वारा हम पापों का नाश करते हैं, विकर्म विनाश करते हैं, उससे भी सहज विधि बाबा हम बच्चों को सुनाते, बच्चे तो मात पिता की दुआएं ले लो। सभी ब्राह्मण बच्चे सिर्फ एक मात पिता की दुआएं अगर हर पल लेते चलें, तो अनेक कठिन पुरुषार्थ से, अनेक प्रकार की मेहनत से, अनेक प्रकार के विघ्नों से, अनेक समस्याओं से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। यही अपने जीवन का एक अनुभव है कि अगर कोई भी योग्यता न हो, फिर भी अगर हम बड़ों के आज्ञाकारी होकर के रहते हैं, हाँ जी का पाठ स्मृति में रखते हैं, तो बड़ों की भी गुप्त दुआएं, निमित्त आत्माओं की गुप्त दुआएं हर प्रकार की योग्यता भर देती हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा ने बहुत इस बार अंडरलाइन कराई है कि बच्चे कुछ भी हो जाए तुम दुआएं लो और दुआएं दो। जैसे कहीं पर भी आग लगती है तो आग बुझाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ आग क्यों लगी है, किसने लगाई है, लेकिन अगर आग लग गई, कुछ हो गया, तो उसी समय वो बुझाने का कार्य शुरू कर देते हैं। कोई आत्माएं अगर किसी कारण से परवश स्थिति में आकर के, किन्हीं विकारों के वशीभूत होकर के बद्दुआएं भी देती हैं, क्रोधित भी होती हैं, विघ्न रूप भी बनती हैं। बाबा ने इस बार हम सबको अंडरलाइन कराई है कि उन बद्दुआओं को भी दुआओं में परिवर्तित कर दो। आप अपनी शुभ भावनाएं कभी भी नहीं छोड़ो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना दुआएं देना है, लेकिन हमें हर पल दुआएं मिल रही हैं, हम ले रहे हैं। किस विधि से हम अनुभव कर सकते हैं? एक अनुभव मैं आपको बताता हूं, सभी भाई बहने इस बात के अनुभवी होंगे। जब से बाबा के बच्चे बने हैं, कई बार जब योग अभ्यास करते हैं तो एक ऐसी आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है, और बिना मेहनत, बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई पुरुषार्थ के अपने आप पूर्ति कला का अनुभव, योग के गहरे अनुभव, बाबा के मिलन का अनुभव, खुशी का अनुभव अपने आप होने लगता है बिना मेहनत के। कोई घड़ियां ऐसी आती हैं जब सोचते रहो सोचते रहो, और यही उत्तर आता है कि मेरा योग नहीं लगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या कारण है। अपने आप में प्रश्न उठने लगते हैं, आखिर भी कारण क्या है? कारण केवल ये बद्दुआ और दुआ का खेल चल रहा है। बहुत सूक्ष्म ब्राह्मणों की दुआएं, बाबा की दुआएं, निमित्त आत्माओं की दुआएं, और जिन आत्माओं को गुप्त रीति से सुख प्राप्त हो रहा है मुझ आत्मा के द्वारा, उनकी दुआएं हमारे योग को बहुत सरल बना देती हैं। कई बड़े बड़े कड़े पेपर जो चलते चलते लगते हैं, कैसे पार करेंगे? कभी कोई शारीरिक कष्ट और बीमारियां ऐसी आ जाती हैं, अनुभव होता है कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर्स भी सोचने लगते हैं कि ये कैसे ठीक होगी, लेकिन बाबा की दुआएं, सर्व ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं उस बीमारी को भी, उस सूली को भी कांटा बना देती हैं। बहुत सहज रीति से वो बीमारी को सहज पार कर लेते हैं, दुख दर्द की अनुभूति नहीं होती, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब दुआओं की कमाल है। योग भी बहुत सहज लग रहा है, बाबा की याद भी निरंतर आ रही है, ऐसे लगता है कि इस कलयुगी संसार में बाबा ने हम बच्चों को कैसे हर बात से, हर परिस्थिति से, हर विघ्न से, विकारों की आग से निकाल लिया है, बचा लिया है, सेक नहीं आ रही है। तो हम सभी जितना इस बात पर ध्यान रखते हैं कि हमें हर पल दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सबकी दुआएं मिलती रहें, बाबा भी गुप्त दुआएं देता रहे। क्या लक्ष्य रखें, क्या एम रखें, किन गुणों की धारणा करके हम चलें तो सबकी दुआएं अपने आप मिलती रहेंगी। आप सभी बाबा की मुरलियों को अध्ययन करते हैं, बाबा ने कई विधियां सुनाई हैं, लेकिन कुछ एक बातें हम अपने अनुभव के आधार से कि कैसे परमात्म दुआओं का बहुत अच्छा अनुभव हर पल होता रहता है, और बाबा ने इतनी गुप्त दुआएं दी हैं जो अनेक समस्याओं को, अनेक परिस्थितियों को, अनेक बातों को सहज पार भी हो जाती, और अनेक प्रकार से सीखने का एक सुअवसर प्राप्त होता रहता है। योग्यताएं अपने आप आती जा रही हैं केवल दुआओं के आधार से। उसमें सबसे एक अच्छा गुण जो बाबा के यज्ञ को चला रहा है, वो है आनेष्टि का गुण, ईमानदारी। अगर बाबा के बच्चे कोई आज्ञाकारी और ईमानदार हैं, ये दो गुण एक दूसरे से लिंक रखते हैं। एक तो बाबा ने हम सभी बच्चों को हर पल के लिए कोई न कोई आज्ञाएं दी हैं, श्रीमत की मर्यादाएं दी हैं। अगर हम आज्ञाकारी होकर के रहते हैं, लौकिक रीति में भी कोई सपूत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं तो माँ बाप अंदर ही अंदर उस बच्चे को दुआएं देते रहते हैं। अगर कोई बार बार आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो श्रापित करने वाले शब्द भी निकल आते हैं, ये तो कहना ही नहीं मानता, ये तो कुल को बदनाम करता है, ये तो हर पल विघ्न रूप बनता है। अगर बाबा के बच्चे सपूत बच्चे बन करके रहते हैं, जब से बाबा के बच्चे बने हैं सदा आज्ञाओं को सिर माथे रखा है, सतगुरु की दुआएं उसे सहज प्राप्त हो जाती हैं। तो हम सभी जो आज्ञाएं अमृत वेले से रात्रि तक के लिए मिली हैं, उन आज्ञाओं प्रमाण आज्ञा के कदम पर कदम रखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आज्ञाएं ही श्रीमत की आज्ञाएं ही बाप दादा के कदम हैं, और उन कदमों पर अगर हम कदम रखते हैं, उनका हम यथार्थ रीति से पालन करते हैं, तो प्रभु की आज्ञाएं हमें, दुआएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, आत्मानुभव करती है। आप देखेंगे एक छोटी सी अवज्ञा भी अगर होती है कि अगर हम सवेरे सवेरे अमृत वेले नहीं उठते, छोटी सी अवज्ञा भी कर लेते हैं, बाबा की आज्ञा है बच्चे सवेरे उठो, अमृत वेले उठो, मुझसे गुड मॉर्निंग करो, पहली नजर में तुम मुझसे बातें करो, आंख खुलते ही बाबा तुम्हारे सामने हो, बाद में कोई दूसरा याद आए पहले बाबा याद आए, ये बाबा की आज्ञा मिली हुई है। और जिस दिन इस आज्ञा का किसी कारण से भी उल्लंघन हो जाता है तो कितने संकल्प चलने लगते हैं, कितना भारीपन महसूस होता है, जैसे हमने कुछ मिस कर दिया। तो बाबा की ऐसी ऐसी छोटी आज्ञाएं भी, भोजन करते समय तुम मुझे याद करो, भोग लगा करके फिर खाओ, चलते फिरते मुझे अपना साथी कम्बाइन स्वरूप में बनाकर रहो, तो ऐसी ऐसी जो बाबा की श्रीमत की आज्ञाएं हैं, अगर हम सब इनका पालन करते हैं तो इन आज्ञाओं के आधार से हम दुआओं का अनुभव करते रहते हैं। और दूसरी इससे कनेक्टेड बात है ईमानदारी, आनेष्टि। आप सभी विचार करते होंगे, और कई भाई बहने जब बाहर से आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, वीआईपी जाते हैं, तो उन्हें एक बात इस विद्यालय की बड़ी वंडरफुल दिखाई देती है, वो हम सबके आगे एक वर्णन भी करते हैं कि इतनी सारी कारोबार चल रही है, कोई किसी का बोस नहीं दिखाई देता, कोई किसी के ऊपर नहीं दिखाई देता, और सब ऑटोमेटिक चल रहा है, बड़ों ने फेथ रखा, हम आनेष्ट रहे। जितना जो आनेष्ट रहता है यज्ञ के प्रति, अपना समझ करके करता है, आनेष्ट बाबा उसे कहते हैं जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ब्राह्मण जीवन में जो बाबा के बच्चे बने हैं, सिर्फ एक बात अगर ध्यान पर रखें कि जो हम दूसरों को कहते हैं, जो हमारी कथनी है, वो हम पहले कर रहे हैं, और अगर कथनी करनी समान है तो ये अपने आप से आनेष्टि है, आत्मा अपने आप पर कृपा करती है, अपने आप को दुआ देती है। भगवान के वह महावाक्य कि आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है, कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं, हम खुद ही खुद के शत्रु और मित्र बनते हैं। तो जब इस बात पर ध्यान जाता है कि क्या हम अपने आप से मित्रता करते हैं, अपने आप को हम दुआएं देते हैं, अपने आप पर कृपा करते हैं। कई बार बाबा कह देता है मुरली में कि मैं किसी पर कृपा नहीं करता हूं। अगर टीचर कृपा करे तो सबको एक जैसे मार्क्स दे दे, सब बच्चे हैं, भगवान पिता है, बाप है, और अगर वो टीचर का रूप न ले तो शायद रहम करके सबको एक जैसे नंबर में बिठा दे, पास कर दे। इसलिए कहता है कि मैं किसी बच्चे पर कृपा नहीं करता हूं, तुम अपने आप पर कृपा करो। और सबसे बड़ी कृपा है तुम ध्यान पूर्वक बाबा की पढ़ाई करो, जो बाबा पढ़ा रहा है उसको यथार्थ रीति से पढ़ो, यही सबसे बड़ी कृपा है। जो हम ऑनेस्टी की बात कह रहे थे कि अपना बाबा का ये घर ऑनेस्टी के आधार से चल रहा है, बड़ों ने विश्वास रखा और हम बड़ों के विश्वास के आधार पर ईमानदारी से जो सेवाएं बाबा ने दी हैं, अगर हम सच्चे दिल से लगन से करते जा रहे हैं तो बाबा की बहुत गुप्त दुआएं, निमित्त आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। क्योंकि किसी पर भी पहरा नहीं है, लेकिन विश्वास अवश्य है, और विश्वास घात न हो, कभी भी कोई अकर्तव्य न हो जाए, जैसे बड़ों ने फेथ रखा है वैसे हम ईमानदार बन करके, अनिष्ट बन करके बाबा की यज्ञ की संभाल करते रहें, जो सेवाएं मिली हैं वो सच्चे दिल से करते रहें, तो ये एक बहुत बड़ा, ये अंदर का गुप्त पुरुषार्थ कहें या सच्चे दिल की लगन के आधार पर बाबा की दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। तीसरी एक बात है जिसके लिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, संतुलन, बैलेंस। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती हैं। वैसे भी आप सभी अनुभवी हैं कि अगर लौकिक में रहते बैलेंस न हो, बहुत ज्ञान योग परमार्थ की तरफ ध्यान हो, व्यवहार छूट जाए, व्यवहार में इतने लग जाओ, लौकिक पर इतना ध्यान दो जो परमार्थ ही छूट जाए। जब कोई अपने लौकिक में लग जाता है तो ज्ञान ध्यान अलग हो जाता, और जब ज्ञान ध्यान में लग जाता है, ज्ञान और योग को करने लगता है तो लौकिक को भूल जाता। बाबा ने हम बच्चों को बैलेंस सिखाया है, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, प्रवृत्ति के अंदर रहते हुए हर बात का बैलेंस चाहिए। अगर आप 6 घंटे 8 घंटे लौकिक के प्रति दे रहे हैं तो लौकिक की जवाबदारियां जितनी आप अनुभव करते हैं, बेहद के दृष्टिकोण से बाबा ने आप पर उससे बड़ी जवाबदारी रखी है। अगर उस तरफ 8 घंटे ध्यान है तो बाबा की सेवा में जरूर 12 घंटे का ध्यान चाहिए, लेकिन 12 घंटे बाबा की सेवाएं कर रहे हैं और लौकिक 4 घंटे भी नहीं देते तो एक बैलेंस टूटता है। इसलिए कई बार हमारे बाबा के बच्चे जो बहुत ऑनेस्टी से अपने ऑफिसेज में काम करते हैं, 8 घंटे का काम भी 6 घंटे 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लोगों का फेथ बैठ जाता है और वो देखते हैं कि कैसे इनके जीवन में बैलेंस है, बैलेंस तोड़ते नहीं हैं। हम सबको भी बाबा ने यज्ञ सेवाएं दी हैं, मधुबन के अंदर तो हर प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन अगर कर्मणा सेवा कर रहे हैं मनसा पर ध्यान नहीं, मनसा सेवा में लग गए, वाचा सेवा छूट गई, बैलेंस समाप्त हो जाता है। इसलिए पिछली बार जब बाबा आए थे, बहुत फोर्स की मुरली चल रही थी, मनसा सेवा टीचर्स को करनी है, बहुत प्यार की शिक्षाएं बाबा दे रहे थे, लेकिन देते देते एक बात बाबा बोलने लगे कि बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि कोई कोर्स करने के लिए आ गया, तो बाबा ने तो कहा है मनसा सेवा करनी है, वाचा सेवा छूट जाए, नहीं, बैलेंस। अगर वो सर्व सेवाओं में, हर कार्य में, खान पान, योग, कर्म, हर बात में बैलेंस से चलते हैं, तो बैलेंस से ही दुआएं प्राप्त होती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला जो सीख लेता है उसको परमात्म दुआएं, परिवार की दुआएं, लौकिक और अलौकिक सब तरफ से दुआएं प्राप्त होती हैं। तो हम सभी को अपनी बैलेंस युक्त लाइफ, संतुलन की लाइफ बनाना और दुआओं का अनुभव करते चलना है। एक और गुण जो बहुत मदद करता है दुआओं में, अनुभव आप सबको होगा कि वो आत्माएं जो नम्रचित हैं, जिनके अंदर नम्रता भरी हुई है, कोट कोट कर कुछ भी कोई कहता है, कोई भी कार्य उन्हें मिलता है और वह नम्रता से उसे कर लेते हैं, अहंकार नहीं आता, अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, अपनी योग्यताएं या अपनी पोजीशन का अभिमान नहीं रखते, बहुत नम्रचित, जैसे बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट हूं, आज्ञाकारी हूं। ऐसे अगर ओबीडियंट होकर के, नम्रचित होकर के, आलमाइटी होते हुए भी, अथॉरिटी होते हुए भी, उसके बोल में कितनी मधुरता है, कितनी नम्रता है, हम सब बाबा के महावाक्यों से अनुभव करते हैं। ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी भी बच्चों को कितना सम्मान देता है, सम्मान देने से दुआएं मिलने लगती हैं। अगर आप बड़ों की दुआएं चाहते हैं, तो लौकिक में भी ये बात मानी गई है कि बड़ों को सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, जितना उन्हें रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, उनकी दुआएं प्राप्त होंगी। तो हम सब भी अगर बाबा के ज्ञान को रिस्पेक्ट देते हैं, पढ़ाई को रिस्पेक्ट देते हैं, श्रीमत को रिस्पेक्ट देते हैं, बाबा को पूर्ण रिस्पेक्ट देते हैं, निमित्त आत्माओं को दे रहे हैं, जिनके द्वारा हमें अलौकिक जन्म मिला है, जिनके द्वारा हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, जो हमारे कल्याण के लिए निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, अगर हम उन्हें दिल से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद के रूप में मिल जाती हैं, और हमारे लिए एक बहुत सहज मार्ग खुल जाता है। सम्मान देना, सम्मान में रहना, और नम्र चित्त बन करके हाँ जी करना, ये दुआओं का दरवाजा खोल देता है। कई बार बाबा के शब्द जब सुनते हैं, दिल में लग जाता है कि बच्चे अगर तुम्हारी दिल सच्ची है, सच्चे दिल से तुम सेवाएं करते हो, तो दुआओं का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाता है, दुआएं मिलती जाती हैं और वो तुम्हारे लिए रॉकेट का काम करती हैं। एक सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से अगर अनुभव नहीं हुआ है अभी तक डिटैच होने का, तो बहुत अच्छी विधि है, दुआ ले लो, तो ये दुआएं रॉकेट की तरह आपको एक सेकंड में विदेही स्थिति का अनुभव करा देंगी। तो हम सभी जितना नम्रचित बन करके रहते हैं, और जितनी गोल के अंदर मधुरता है। इस बार बाबा ने कहा है इस वर्ष के लिए बाप दादा की एक ही आस है, इस वर्ष के लिए चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो और बोल में मधुरता हो, आपके बोल मधुर हो। मधुर बोल उसे ही कहा जाता जिसमें आत्माओं का सम्मान है। अगर किसी का सम्मान हमारे बोल से टूटता है, किसी की स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, तो उसकी दुआएं नहीं मिल सकती हैं। हम सब को दुआओं का स्टॉक जमा करना है, इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान देने की, अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। बाबा बार बार हम सब का मुरली में ध्यान खिंचवाते हैं और कई वर्षों से बाबा की इस बात पर ध्यान गया है। करीब 88-86 से हमने बाबा की ऐसी मुरली जिसमें बाबा ने कहा है बच्चे सबसे बड़ा, सबसे आवश्यक ध्यान देने योग्य बात है कि अपने बोल पर कंट्रोल रखो। बोल ही आपको बहुत ऊंची स्थिति में ले जाएगा, अनेक आत्माओं की दुआएं दिलाएगा, और अगर बोल अधिक भी हैं तो कहीं न कहीं वो व्यर्थ की श्रेणी में आ जाते हैं और व्यर्थ बोल से दुआएं प्राप्त नहीं होती। तो हम सब अगर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे बोल बहुत मधुर सम्मानजनक हों, सम्मान दें, सम्मान में रहें, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये जो बाबा का एक महामंत्र मिला हुआ है, ये दुआएं प्राप्त करने का साधन बन जाता है। तो एक नम्रता जो हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए कवच है। अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता और अधिक बोलने वाले के साथ कोई बैठना उठना नहीं चाहता। आपने अनुभव किया होगा, हम भी अपने संगठन में अनुभव करते हैं, जो बहुत बातें करने वाले होते हैं उनसे हर एक किनारा करके रहना चाहता है, हर बात में किनारा करके चलता है। तो हम अगर इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी बहुत बड़ी शक्तियां भी जमा हो जाएंगी और बोल के द्वारा दुआएं दे भी सकेंगे और दुआओं का अधिकार ले भी सकेंगे। एक और बात ध्यान पर आती है, बाबा ने कई बार कही है कि प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये दुआ प्राप्त करने का साधन है। लेकिन देखा यह जाता है इस बात को, जब हम संतुष्टता की बात को लेते हैं तो कई भाई बहने इस पर एक प्रश्न करते हैं और वो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं सुनाता हूं। संतुष्टता के नाम पर कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, क्या करें, संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन बाबा ने जब दुआएं देने की बात कही है, दुआएं लेने की बात कही है, तो मर्यादाओं पर पहला ध्यान, बाबा किस बात में राजी है, परमात्मा किस बात में राजी है, आत्माओं से दुआएं लेने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, विशेष करके हमारी भोली भोली माताएं इस बात पर ध्यान देंगी। कई बार बाबा कहता है बच्चे सुख दो, संतुष्ट करो, तो संतुष्टता के आधार से, इस नाम से, सुख देने के नाम से मर्यादाएं अगर उल्लंघन होने लगती हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं उल्लंघन की, बाबा को असंतुष्ट कर दिया और व्यक्तियों को संतुष्ट करने लगे। तो भगवान की दुआएं बड़ी हैं या इंसान की? इसलिए इस बात पर बहुत गहराई से विचार करना है। और बाबा ने एक बार हम सबको यहाँ पर मधुबन निवासियों को विशेष एक बात कही थी कि मर्यादा संपन्न संतुष्टता चाहिए, मर्यादा संपन्न संतुष्टता। इस पर हम सब ने बहुत अच्छे वर्कशॉप किए थे, आपस में क्लासेस की थी कि संतुष्टता में भी मर्यादा चाहिए। बाबा ने क्या मर्यादाएं की लकीर खींची है, क्या श्रीमत दी है? जैसे कई भाई बहने खान पान की मर्यादा जानते हैं, ब्रह्मचर्य की मर्यादा जानते हैं, सत्संग की मर्यादा जानते हैं। बाबा ने हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए मर्यादाएं बना करके दी हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर दें, ये क्या करें, व्यक्ति नाराज हो जाएगा, पता नहीं ये क्या कहने लगेगा। युक्ति युक्त होकर के चलना, युक्ति से मुक्त हो जाना, झगड़े करने के लिए बाबा ने मना किया है कि झगड़े नहीं करो। ऐसे नहीं है कि आप जिन परिवार में रहते हो, जैसे कुमार भाई कई बार जिन माता पिता के हाथों से पले हैं, जिनके साथ इतना समय रहे हैं, जिनके हाथ से भोजन खाया है, पालना ली है, अगर बड़े होकर के जब ज्ञान मिल जाता है और उनका विरोध करते हैं कि हम तो तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, और इतना कई बार टक्कर ले लेते हैं जो ज्ञान और ज्ञानदाता बदनाम होने लगता है, इतना ऊंचा ज्ञान भी बदनाम होने लगता है कि क्या बहनों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने इन्हें सिखाया है जो ये संस्था में गए हैं और हमें अछूत समझते हैं। ध्यान देने की बात है, बाबा ने कभी नहीं कहा है कि ऐसी टक्कर लो। अगर सहज मुक्ति मिलती है, सहज छुटकारा मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो बाबा की याद में शुद्ध शाकाहारी भोजन अगर आप खाते हैं, कोई बहुत कारण बन गया है, बहुत डिसर्विस हो रही है, तो झुकना अपने आप को मर्यादा के अनुकूल भी है, और ये भी बहुत बड़ी मर्यादा है, सेवा है कि हम सबको संतुष्ट करके चल रहे हैं। तो परिवार के अंदर टकराव न हो, हम युक्ति युक्त होकर के चलें, ज्ञान के राज समझ करके खुद भी राजी रहें और दूसरी आत्माओं को भी राजी करें, तो दुआएं प्राप्त होंगी। कई बार ज्ञान का उल्टा नशा ज्ञान की बदनामी कराता है। नशा चढ़ गया, आ गई अंदर की बात कि भगवान कह रहा है, संगम युग चल रहा है, अभी तो हमें ये करना है ये करना है, और हर एक को डोंट केयर अगर कर देते हैं तो डोंट केयर कहने की नेचर भी बद्दुआओं का अधिकारी बना देती है, दुआएं नहीं दिलाती। इसलिए हम सब अगर ज्ञान युक्त होकर के चलते हैं, इसमें बाबा का एक शब्द आप सबके ध्यान पर होगा, राजयुक्त बनो, युक्ति युक्त बनो, तब योग युक्त बनेंगे। सहज योग के लिए हर एक ड्रामा के राज को जानना, हर एक आत्मा के पार्ट के राज को जानना, अपने पार्ट के राज को जानना और राजी रहना। जो जितना राजी रहता है, संतुष्ट रहता है, राजी रहना माना संतुष्ट रहना, और जो दूसरों को ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल राजी करता है, उसे दुआएं प्राप्त होती हैं। तो हम सभी कहाँ तक संतुष्ट रहते हैं, कहाँ तक अंदर से आत्मा प्रसन्न चित रहती है? अगर वो प्रसन्न चित है और दूसरी आत्माओं को प्रसन्न कर रही है अपनी हर एक्टिविटी से, सुख पहुंचा रही है, अंदर से सुख की अंदर की स्थिति प्रसन्नता है, और उस प्रसन्नता की स्थिति से वो आत्मा दुआएं देती है। तो सबसे पहले हम परमात्म दुआएं कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं, फिर ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हमें कहाँ तक दुआएं दे रही हैं। निमित्त आत्माओं के द्वारा जिन्हें बाबा ने गद्दी दी है, जिन्हें बाबा ने अपनी सीट दी है, पिछली बार भी बाबा एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि टीचर्स को बाबा ने अपनी गद्दी दी है, मुरली सुनाने की गद्दी टीचर्स को मिली है, भगवान की गद्दी मिली है। तो क्या जिन आत्माओं को बाबा ने गद्दी पर बिठाया है, भले कितने भी हम समझदार हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, योग्य हों, हमें तो बहुत एक अच्छा वंडर इस विद्यालय में देखने को मिला है और अभी तक देखते रहते हैं कि अनपढ़ भी एक दो साल से ज्ञान में आने वाली बहनें जिनको बाबा टीचर की गद्दी दे देता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पढ़े लिखे MBA की डिग्री लेने वाले भी स्टूडेंट बन जाते हैं। टीचर 5 क्लास 6 क्लास 10 क्लास पढ़ी और स्टूडेंट उनके MA और BA पढ़े हुए हैं, है ना वंडर इस विद्यालय का। और ये विद्यालय का वंडर इस आधार से चल रहा है कि वो टीचर जिसको बाबा ने बनाया है, वो टीचर अपने को टीचर नहीं समझते, लेकिन सुप्रीम टीचर उसके साथ है। तो हम सब के साथ जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, अगर हम इस नजर से देखते हैं, ये नहीं पढ़ा रही, ये डायरेक्शन नहीं दे रही, लेकिन इनके पीछे निमित्त कौन है, इनको बनाने वाला कौन है, करावन हार कौन है, किसने इनको गद्दी दी है, तो एक अंदर से रिस्पेक्ट रहता है और उस रिस्पेक्ट के आधार से हमें उन आत्माओं की भी दुआएं मिल जाती हैं। तो निमित्त आत्माओं की दुआएं मिलती रहें, दुआओं से जो हर्ष होगा, अंदर से आत्मा प्रसन्न होगी, खुश होगी, वो खुशी योग का आधार बन जाएगी। हम सभी योग के लिए केवल 2 बातें स्मृति पर रखें, क्योंकि तो कई भाई बहनों के प्रश्न होंगे कि योग में बहुत मेहनत लगती है, योग में बहुत दृढ़ संकल्प आते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आत्मा अंदर से आनंदित है, अंदर से प्रसन्न है, खुशनुमा रहती है, तो आंतरिक प्रसन्नता, अंदर का नशा और खुशी योग में उड़ने का आधार बन जाते हैं। आत्मा 1 सेकंड में इस साकार लोक से अपने सूक्ष्म और मूल वतन में पहुंच सकती है, लेकिन आंतरिक खुशी की अनुभूति कहां तक है, और आंतरिक खुशी दुआओं के आधार से ही मिल सकती है। ऊपर ऊपर की खुशी सेवाओं से मिल जाएगी, आप किसी की सेवा ऊपर ऊपर से कर दो, थैंक्स दे देगा, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर जिगर से किसी ने दिल से समय पर साथ दिया है, हम आपको एक मिसाल बताना चाहते हैं बाबा का ही। आप सबको मालूम है यज्ञ इतिहास के अंदर जब बेगरी पार्ट का समय चला, जब बाबा पूरे संस्था सहित सिंध हैदराबाद से, कराची से माउंट आबू आए और 3-4 साल तक यज्ञ फुल बेगरी में था, यहां तक भी 350-350 के स्टाफ के पास दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अभी सुबह क्या होगा, दोपहर का भोजन कुछ भी पता नहीं था, भंडारी के अंदर 4 आने भी नहीं होते थे, और ऐसे बेगरी पार्ट के समय जिन्होंने बाबा को गुप्त समय पर साथ दिया, भले बाबा की टचिंग से साथ दिया, बाबा आज तक भी उनके बंधन में बंधा हुआ है, उन्हें दुआएं मिल रही हैं, कई भाई बहने प्रश्न कर लेते हैं, उस समय जो परिवार आए, सिंधी फैमिलीज विशेष करके निमित्त बनी, गुप्त रीति से बाबा की टचिंग हुई और उन्होंने यज्ञ में सहयोग भेजा, समय प्रसाद दिया, छिपा छिपा करके माताओं ने बहुत सहयोग दिया बेगरी पाठ के समय। आज तक भी बाबा उन्हें मुरलियों में याद करता है और अगर वो सामने आ जाते हैं तो उन्हें स्टेज पर बुला लेता है। ये बाबा की गुप्त दुआएं उन्हें मिली हैं, इसलिए समय पर साथ देने वाले, अगर कोई किसी को भी लौकिक दुनिया में भी है सब कुछ और उस समय कोई करता है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब नहीं हो, कोई बात की आवश्यकता हो और आवश्यकता के समय साथ दिया जाए, सहयोग दिया जाए, तो उसकी बहुत पुण्य जमा हो जाते हैं, बहुत दुआएं मिल जाती हैं। तो हम समय पर किसी आत्मा को, मान लो कोई आत्मा किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गई है, किसी कारणवश अपसेट हो गई है, तो उस आत्मा को अगर हम गुप्त रीति से दुआएं देते हैं, सहयोग देते, साथ देते, उसको मदद करते हैं, तो क्या होगा, ऐसी आत्मा सदा के लिए आपको दुआएं देती रहेगी। समय पर साथ दिया, जब उसकी स्थिति खराब थी उस समय उसकी स्थिति को बनाने में मदद की, तो हम सभी दुआएं देते चलें और दुआएं लेते चलें, यही सहज योग का आधार है और बहुत सहज बाबा के पास दुआओं के आधार से उड़ते रहेंगे। तो ध्यान रखना है, ब्राह्मण जीवन में हम सभी बाबा के बच्चे दुआओं के खजाने से भरपूर रहें, तो अंतकाल की अनेक आने वाली परिस्थितियों को सहज पार कर लेंगे। ओम शांति।